आज बाप दादा की मुरली में हम सब सुने कि जो अनुभवी मूरत है वही बाप को प्रत्यक्ष कर सकते हैं, लेकिन अनुभवी मूरत पहले खुद को प्रत्यक्ष करना, खुद के प्रत्यक्षता द्वारा ही खुदा की प्रत्यक्षता कर सकते हैं। इस बात पर हम सभी थोड़ी देर चर्चा करेंगे। जो भी पीछे पीछे बैठी है माता है, सब सामने आ जाइए। हम सब गार्ली स्टूडेंट्स है, यहाँ सामने आ जाइए। जो नीचे बैठ सकते हैं वो नीचे आराम से सामने आ जाइए, जो नहीं बैठ सकते वो सोफे पर या चेयर पर थोड़ा आगे आ जाइए। माता ये भाई लोग भी, जब हम सभी ज्ञान मार्ग में आए तो सबसे पहले हमें अनुभव मिला हम खुद कौन है। आत्मा का ज्ञान मिला, आत्मा का अनुभव हुआ। माता इधर से थोड़ा उस तरफ से जाओ, इधर भाइयों के पास। जब हमें मालूम पड़ा मैं ये भौतिक शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ, ज्ञान मिला और उसके बाद उसका प्रैक्टिस हुआ। जब जब ज्ञान में आते हैं तभी तुरंत वो ज्ञान अंदर चले जाता है सबको। उसका प्रैक्टिस करते करते उसका अनुभव हो जाता। अनुभव के द्वारा ही हमें योगी जीवन प्राप्त हुआ। आत्मा का अनुभव हुआ तो योगी तो आत्मा बने। बनने के बाद जैसे मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, मेरी आत्मा की जो मूल है उसकी पहचान मिली, उसका अभ्यास करते करते मैं आत्मा योगी बन गई। जब योगी बनी तो बाबा के प्यारे हो गए। चलते चलते पुरुषार्थी के जीवन में आत्मा का ज्ञान रह गया, अनुभव धीमे धीमे कम होती गई। क्यों? क्योंकि हमारा अटेंशन, प्रैक्टिस, अभ्यास कम होने लगा। अभी अभी हमारे पास रशियन ग्रुप वाले आए थे, उन्होंने मैसूर दशहरा में भारत के जो मूल्यों का नृत्य किया वो सभी को बड़ा पसंद आया। हम लोगों को भी बहुत पसंद आया क्योंकि वो लोग भाषा ना इंग्लिश जानते हैं ना हिंदी जानते, केवल रशिया का लैंग्वेज जानते, तो भी उन्होंने इतना परफेक्ट हिंदी वर्ड के उसका हर शब्द का एक्शन द्वारा अनुभव कराया। हमारा भारत देश कैसे ऊंचा है, सभी अनेक अनेक गीतों द्वारा भारत के बारे में, भारत की महिमा के बारे में उन्होंने नृत्य पेश किया और परफेक्टली किया। कैसे किया? हमने उनको पूछा, आपको ना हिंदी आता ना इंग्लिश आता, इतना सुंदर नृत्य कैसे कर रहे हैं? तो उन्होंने ये बोला, ये रोज प्रैक्टिस कर रहे हैं। रोज ज्ञान सुनने के बाद आधा घंटा एक घंटा प्रैक्टिस करते, फिर जब छुट्टी का दिन होता है तो दो घंटा चार घंटा प्रैक्टिस करते, करते ही रहते हैं, प्रैक्टिस करते ही रहते हैं। जिस कारण वो लोग अभी विदेशी होते हुए भारत देश में भारत देश की महिमा का नृत्य इतना सुंदर करके दिखाते हैं जो भारतवासी कर नहीं सकते। कहने का मतलब ये है, हम सभी आत्मा का ज्ञान तो सुन लिया, हमें मालूम है हम आत्मा हैं। हमारे आदरणीय दादी रतनमणि दादी जी पूछ रही थी, आप सभी आत्मा के स्वरूप के रोज प्रैक्टिस करते? जो करते हैं वो हाथ उठाओ। उसमें जो नहीं करते वो हाथ नहीं उठा सकते। अगर सचमुच हम रोज प्रैक्टिस करते हैं, जैसे पहला दिन ज्ञान में आए, आत्मा का ज्ञान को प्राप्त किया, उसमें कितनी गहराई में गए, कितना अटेंशन दिया, कितना उसका अनुभव पाया, ऐसा अगर रोज हम आत्मा के बारे में, आत्मा के स्वरूप में स्थित होते हैं, हमारे नैनों में हम आत्मा का अनुभव करते हैं, खुद दूसरों को अनुभव कराते हैं, हर कर्मेंद्रियों द्वारा हम आत्मा का अनुभव करते हैं, सूक्ष्म इंद्रियों द्वारा और स्थूल इंद्रियों द्वारा हम आत्मा इतना शुद्ध और पवित्र पावरफुल हो जाते हैं अगर रोज करते हैं तो। आत्मा का अनुभूति होने के बाद, योगी बनने के बाद, फिर भोग विलास में जा ही नहीं सकते। कोई भी राग विलास हमको आकर्षित नहीं कर सकते। हमको मान चाहिए, शान चाहिए, अच्छे अच्छे भोजन चाहिए, अच्छा पहनना चाहिए, जो कुछ लालच बढ़ती है ये आत्मा की अनुभूति की स्थिति नहीं है। इन सब से हम बाहर हो तभी हम कह सकते हैं हम आत्मा की स्थिति में हैं, आत्मा की अनुभूति है। क्योंकि इन चीजों में जब हम फंस जाते हैं तो बाहर मुखी हो जाते, देहाभिमान में आ जाते हैं और देहाभिमान का रूप और बढ़ता जाता है। जो हम देखते ज्ञानी बाबा के बच्चे होते हुए भी, जैसे कि दुनिया के अनेक अनेक स्थान को देखना चाहते हैं, दुनिया को देखने की बाबा ने पहले ही कह दिया है ये पुरानी दुनिया है, अभी इसका विनाश होने वाला है, तो भी हमें आकर्षण है वो जगह देखना, ये जगह देखना, वहां जाना, यहाँ जाना। क्यों? क्योंकि हमें आत्मा का अनुभूति नहीं हुआ है। इसका मतलब कहां भी नहीं जाना, एक गुफा में बैठ जाना, वो नहीं है। जब जब मौका आता है तब देख लेना अलग बात है, लेकिन प्रोग्राम करके ही देखना, प्रोग्राम करके ही सुनना, प्रोग्राम या लालच के वश होकर के खाना पीना, ये सभी बातें हमें आत्मा की अनुभूति से दूर करता है। जब सचमुच हम आत्मा का अनुभूति में पक्के हो जाते हैं, रोज प्रैक्टिस करके पावरफुल हो जाते हैं, शक्तिशाली हो जाते हैं, तो हमें कोई बात का डर नहीं है। ये देहबान हमें अनेक प्रकार का डर लाता है, मान का डर, शान का डर, पोजीशन का डर, अनेक अनेक बातों में हम डरपोक बन जाते हैं। अगर आत्मा का अनुभूति हो किस बात का डर होगा? देह को कोई बीमार भी हो, रोग का शोक और शाक, ये भी हमें अनुभव नहीं हो सकता अगर आत्मा का अनुभूति किया हो। क्योंकि हमें मालूम है ये हमारा ही हिसाब किताब है जिसका हम भोग रहे हैं। जो आत्मा का अनुभवी है वो भोगते नहीं है, वो योगित होकर के जल्दी चुप्त करते हैं। तो इसलिए आत्मा अभिमानी की स्थिति जो है रोज हमें इस योगी जीवन में आगे बढ़ाता है, चाहे बच्चे हो, चाहे बड़े हो, चाहे आज आए हो, चाहे बहुत साल से आए हैं, जितना जो प्रैक्टिस करेगा, अभ्यास करेगा, उसका अनुभव उसको आगे बढ़ाता जाता है। वो अनुभवी मूर्त दूसरों को अनुभव कराते हैं। पहले अपनी चैरिटी बिगिन्स एट होम, अपने घर में एग्जाम्पल होंगे, माँ होंगी, माँ को अगर आत्मा का ज्ञान होगा तो उसका प्रैक्टिकल अनुभव कराएंगे। हमने बहुत हमारे परिवार के अनेक अनेक विशेष आत्माओं का अनुभव सुना है। एक माता थी लंदन में, जो परिवार पूरा ज्ञान मार्ग में चलते हैं। उसका पति डॉक्टर था, उसने शरीर छोड़ा था, तो सेंटर वालों को किसी को पता नहीं था डॉक्टर जी शरीर छोड़ा है। वो माता जी ज्ञान मुरली क्लास में आकर के मुरली सुन रही है। ये कैसा होगा, पति शरीर छोड़ा है, बच्चे भी घर में हैं, खुद भी योग करके अपना नियम पालन कर रही है, पहले ईश्वरीय ज्ञान सुनू बाद में सब कार्य करेंगे। दादी, आदरणीय दादी अचानक फोन किया उसके घर में, दादी को भी पता नहीं था, तो उन्होंने बोला माँ मुरली सुने गई है, पिताजी शरीर छोड़ा है, हम लोग योग कर रहे हैं। तो देखिए ये क्या है, ये कौन सी स्टेज है, जिसका आत्मा का अनुभूति हुआ हो उसको चिंता, शोक, दुख, अशांति घेर नहीं सकते हैं। वो सब कुछ करते हुए न्यारे रह सकते हैं और सबके साथ प्यारे रह सकते हैं। इसी स्थिति को देखते हुए दादी को, दादी ने इतना वो प्यार किया, सारे परिवार को, हजारों लोगों को लेके गई उस आत्मा का पूरा संस्कार पूरा करने ले। मतलब हम अपने जीवन में आत्मा की स्टेज में हमको थोड़ा सा भी दुख होगा, कोई परिस्थिति आएगी, कोई छोटा मोटा रोग आएगा, तो हमको आत्मा का स्थिति है, आत्मा का ज्ञान है, हम दुनिया के लोगों जैसे डॉक्टर लोगों को पूछेंगे, डॉक्टर जी कैसे भी हमें बचाओ, कैसे भी हमको अच्छा दवाई दो, कितना भी खर्चा होवे, ऐसा अगर हम दुनिया लोगों से हम भी ऐसा बात करें तो हमको और दुनियावी लोगों को कोई फर्क नहीं रहेगा। हाँ, इसका मतलब ये नहीं है डॉक्टर को नहीं दिखाना, दिखाना है, लेकिन हम डर के माफे बचने के लिए हमारे वार्ता होवे वो ना होवे। तो इसलिए सब कुछ करते हुए भी आत्मा का अनुभूति हमें कितना ऊंची स्थिति में ले जाता है। हमें कोई चिंता नहीं होगी, हमारे साथ कोई नहीं है, हम अकेले हैं, क्योंकि जो शुद्ध आत्मा होती है तो उसके आसपास सब लोग पास रहेंगे। क्योंकि एक बार एक महात्मा जी एक गांव में गए, वहां प्रवचन किया, लोगों ने बोला इस गांव में बहुत झगड़ा होता है तो इसको कैसे मिटाना है। तो महात्मा जी ने बोला आप लोग कहां भी नहीं जाना, इसी गांव में ही रहना। और ऐसे चलते चलते महात्मा जी दूसरे गांव में गए, वहां बहुत अच्छे लोग थे, उन्होंने बोला ये लोग बहुत अच्छे अच्छे हैं। तभी महात्मा जी ने बोला इनको चारों तरफ सभी जगह जावे। ये लोग जो साथ में था चेला, उसको वंडर हुआ ये गुरुजी ने क्या बोला, जो ऐसे झगड़ालू व्यक्ति है उन लोगों को बोला वहां ही रहो, जो अच्छे अच्छे व्यक्ति है उनको बोला चारों तरफ जाओ। उनको मन में प्रश्न आया, पूछा ऐसा क्यों बोलते, तो उसने कहा ये बुरे लोग अगर जाएंगे तो चारों तरफ सबको बिगाड़ेंगे, इसलिए वो एक ही जगह रहे। जो अच्छे लोग जाएंगे चारों तरफ सबको अच्छा करेंगे। मतलब हम आत्मा का अनुभूति करेंगे, हमारे जीवन द्वारा अनेकों का कल्याण होगा। कोई भी परिस्थिति में हम अशांत नहीं होंगे, दुखी नहीं होंगे, खुशी को हम नहीं खोएंगे, आपस में प्यार प्रेम में रहेंगे। इसी स्थिति को देख के एक दो को मदद मिलेगा, एक दो को प्रेरणा मिलेगा। ये प्रैक्टिकल हमारे जीवन द्वारा कितने लोगों को रोज हम अनुभूति कराते हैं, ये हमें अपने ऊपर अटेंशन देना है। आत्मा दादियां तो इतने साल से प्रैक्टिस किया है और अभी भी उसी स्थिति में रहते, क्योंकि जो बहुत प्रैक्टिस करते हैं वो प्रैक्टिकल स्वरूप हो जाता है। तो हमको याद करके मैं आत्मा हूँ, याद करके किसी को देखना, किसी से बोलना, क्योंकि प्रैक्टिकल प्रैक्टिस निरंतर नहीं है, तो कभी कभी देखना और सुनना ऐसा प्रैक्टिस करना होता है। अगर निरंतर हम प्रैक्टिस करते तो हमारा जीवन अनुभवी जीवन हो जाता, ऊंचे जीवन हो जाता, जो अन्य आत्माओं को साक्षात्कार होता। दुनिया में यहाँ तक पहचानते हैं ब्रह्मा कुमारी आश्रम वाले, शांति मार्ग वाले, उनको आत्मा का ज्ञान का पता नहीं है, ये शांति कहाँ से आई है। इन्होंने यही बोलते, इनके पास एक शांति की शक्ति है, इन्होंने शांति की शक्ति द्वारा समाज को सुधार रहे हैं। ये शांति बहुत जरूरी है, आज की दुनिया में बहुत आवश्यक है। ये सब बोलते हैं, फिर भी वो लोग ये शांति कहाँ से मिली, कैसे ये समाज को देने के लिए प्रयास कर रहे हैं, ये मालूम नहीं है। ये बाबा ने इतना बड़ा शक्ति आत्मा के ज्ञान द्वारा हमें दिया है। जो आत्मा के ज्ञान में स्वरूप में स्थित होते हैं, अनुभव करते हैं, वो खुद शांत में रह सकते हैं, शांति से बोल सकते हैं, हर कार्य, हर व्यवहार, हर घर में शांति हो जाती है। बाबा के बच्चों ने, जिन्होंने अनुभव किया, उनके घर में शांति बसा हुआ है। वे बाबा के बच्चे सबको अनुभव कराने लिए प्रेरणादायक बने हैं। तो इसे हमें हर बाबा के बच्चे, बाबा जो आज की मुरली में कह रहा था, हर बच्चे को मैं प्यार करता हूँ, बच्चों के बिना मैं नहीं रह सकता हूँ, कितना प्यार है बाबा को। उसका बाबा को हम रिटर्न क्या कर रहे हैं? सिर्फ सुनकर के हम खुश हो रहे हैं, या बाबा को रिटर्न, बाबा बच्चों के बिना नहीं रहता है तो बाबा के बिना हम कैसे रहे? बाबा के बिना माना बाबा के ज्ञान के बिना हम कैसे रहे? बाबा ने जो ज्ञान दिया उसका अनुभव के बिना हम कैसे रहे? वो रिटर्न हमके देना। हम आत्मा परमात्मा को, आत्मा जब अनुभव किया तो आत्मा का गुणों का अनुभव किया। हम सबको, लोगों को सुनाते सात गुणों का अनुभव करना, ज्ञान, पवित्रता, शांति, सुख, प्यार, आनंद और प्रेम, शक्ति। इन सात गुणों को हम लोगों को सुनाते हैं। हम हर रोज इन सात गुणों को अनुभव कर रहे हैं। अगर आत्मा का ज्ञान में हम बहुत गहराई में जाते हैं, उस ज्ञान स्वरूप में हम स्थित होते हैं, तो हम सबको एक जैसे देख सकते हैं। हम सब एक है, दुनिया में कहने मात्र कहते सब एक है, लेकिन एक का अनुभव नहीं कर सकते, यूनिवर्सल ब्रदरहुड अनुभव नहीं कर सकते। ये आत्मा के ज्ञान से ही हम सब एक है, हम सब भाई भाई है, हम सब एक एक यूनिवर्सल ब्रदरहुड है, ये अनुभव कर सकते हैं। आत्मा का अनुभव से हम अपनी स्थिति को इतना ऊंचा बनाने के लिए रोज बाबा हमें ज्ञान दे रहा है। पवित्रता का अनुभव, दुनिया में किसी के पास अनुभव नहीं है पवित्रता का। हमको जगदीश भाई जी ने कहानी सुनाए थे, पवित्रता कितनी ऊंची स्टेज बाबा ने आत्मा के ज्ञान द्वारा हमें अनुभव कराया। एक बार एक संत ने बहुत फेमस हो गया था शहर में, इतना पवित्र व्यक्ति, इतना फेमस हो गया संत सन्यासी। तो एक भाई ने सोचा ये सचमुच इतना पवित्रता को पाया है, इसको प्रैक्टिकल हमें देखना चाहिए। सन्यासी लोग अपने आश्रम में नियम बना हुआ होता, वहां कोई बहने नहीं जावे, माताएं नहीं जावे, वो भी शाम को नहीं जावे, रात को नहीं जावे। तो एक भाई ने जानबूझ के अपना वेश बदली करके बहन के रूप से शाम को शहर से बाहर था वो आश्रम, इतना फेमस संत के पास पहुंच गई। तो संत बोल रहा था देर हो जाता है, आप जल्दी जल्दी आप काम उतार के आप किस लिए आई हो वो बात पूरा करके जल्दी चले जाओ। तो वो जानबूझ के ही धीरे धीरे कर रहे थे। थोड़ा देर हो गया, 8-9 बज गया, तो कहती है मैं महिला हूँ, मैं इस रात में नहीं अकेली जा सकती हूँ, यहाँ ही मुझे एक खूना में जगह दे दो, मैं वहाँ सोई रहूंगी, सुबह उठ के चले जाऊंगी। वो संत बहुत कोशिश करता है इसको कैसे भी भगाना है, ये नहीं जाती है, जिद करके बैठी है मैं नहीं जाती हूँ, अभी मैं नहीं जा सकती हूँ, बहाना करके बैठ गई। फिर बेचारा इसको और कुछ सुझा नहीं, उसने बोला बाजू में एक झोपड़ा है वहां जाके ठहरो, झोपड़ी में वहां बिठा दिया उसको। फिर रात को संत का नींद उड़ गया, तो फिर उसको नींद ना आने के कारण गया वो झोपड़ी के पास, दरवाजा खटकाया, तो वो बोलती है मैं नहीं खोलूंगी, मैं महिला हूँ, नारी हूँ, आप तो पुरुष है, आप संत है भले, देखते आप तो पुरुष है, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। उसको इतना गुस्सा आया, आपको मैं मना करते हुए भी क्यों रह गई यहाँ, अभी रही तो दरवाजा खोलो। उसने बोले नहीं खोलूंगी। इसने जिद करके दरवाजा तोड़ने लगा, जब दरवाजा तोड़ के अंदर जाने लगा तब उसने अपना वेश बदल कर दिया। तब उसको महसूस हुआ मैंने कितना गलती किया, क्यों ऐसा हुआ संत को, इतना प्रसिद्ध संत था तो भी नारी के सामने एक पवित्रता शक्ति को अपना नहीं सका, क्योंकि आत्मा का ज्ञान नहीं था। वो तो परमात्मा को सर्वव्यापी मानता था, सबको परमात्मा परमात्मा ही मानता था, तो भी उनके अंदर वो ताकत नहीं था, मैं भी आत्मा हूँ वो भी आत्मा है, आत्मा का ज्ञान नहीं था। तो इसलिए बाबा ने इतना ऊंचा ज्ञान दिया है, आत्मा का ज्ञान से हम किसी के साथ भी चल सकते, इतना दुनिया के सामने चैलेंज है जो प्रवृत्ति वाले पति पत्नी साथ होते हुए भी पवित्रता की प्रत्यक्ष कर सकते, कैसे कर सकते हैं, पवित्र कैसे रह सकती, पुरुष और स्त्री साथ रह करके कैसे पवित्र रह सकती, ये दुनिया वाले नहीं कर सकते, ये बाबा ने आत्मा का ज्ञान दिया। इस ज्ञान को जिन्होंने अपनाया, जिन्होंने अनुभव किया, वो भले पति पत्नी साथ होते हुए भी पवित्र आत्मा हो करके, ज्ञानी आत्मा हो करके, योगी बन के जी रहे हैं, जो दुनिया के सामने प्रैक्टिकल सबूत है। तो आत्मा का ज्ञान इतना ऊंची है, किसी भी बात में ना सोचने की, ना डरने की, ना चिंता करने की, इन सब बातों से हम मुक्त होकर के हमारे जीवन को भी बंधन मुक्त बना के जी सकते हैं। पहले अपने शरीर के बंधन से हम छूट सकते हैं, जो शरीर के बंधन से छूटते हैं वो सब बंधनों से छूट सकते हैं। वो आत्मा पवित्रता की शक्ति, आत्मा का ज्ञान मिला, ज्ञान ज्ञानी तो आत्मा बन गए, फिर पवित्र आत्मा बन गए, वो आत्मा शांति स्वरूप हो गए। जिसके अंदर पवित्रता है पवित्रता ही सुख शांति की जननी है। दादी कहती है, दादी को किसी ने पूछा आपने शादी किया, तो दादी बोली हाँ। कितने बच्चे हैं? दो बच्चे। दादी कहती मेरा पति अमरनाथ है, मेरे को सुख और शांति दो बच्चे हैं। ये प्रैक्टिकल बातें हैं। दादी ने अपना अनुभव ऐसे असी मजाक से नहीं बोली, अपनी प्रैक्टिकल अनुभव सुनाया। परमात्मा को अपना बनाया और परमात्मा से जो सुख शांति रूपी बच्चे मिले, वो सुख शांति से जी रहे हैं। माँ बाप बच्चों को क्यों चाहते हैं? सुख शांति से जीने के लिए। जो बाबा के बच्चे हो जाते हैं उनको सुख शांति मिल जाता है, अगर उस ज्ञान को प्रैक्टिकल अभ्यास करने से, प्रैक्टिस करने से वो सुख शांति का अनुभव कर सकते हैं। और हमें प्रेम प्यार आज दुनिया में क्या मिल रहा है? स्वार्थ, इतना स्वार्थ प्यार है। किसी को थोड़ा सा ज्यादा मिलेगा दूसरा देख नहीं सकता ना सहन कर सकता। खुद को भले ज्यादा मिले दूसरों को कम मिले, इतना स्वार्थवश दुनिया में सब चल रहे हैं। चाहे चीजों में प्यार हो, चाहे मैं महिमा में प्यार हो, चाहे अधिकार में प्यार हो, चाहे पैसे में प्यार हो, कोई भी बात में वो स्वार्थ प्यार ही है। जिसमें जिस स्वार्थ प्यार में पाप भरा हुआ है। लेकिन बाबा ने हमें आत्मा का ज्ञान दे करके ऐसा सच्चा प्यार, पवित्र प्यार दिया है, जो जिस किसी को भी ये प्यार मिलेगा उसका जीवन और ऊंचा होता जाएगा, किसी का कुछ नुकसान नहीं होगा। ऐसे ही हमें आनंद, आनंद उसको मिलता है जिसके मन में संतुष्टता है, समाधान है। आत्मा का ज्ञान से हमें ये गुण प्राप्त हुआ, आनंद हुआ, और कुछ नहीं चाहिए हमें। हमारा मन निर्मल शुद्ध हो गया, जो अनेक प्राप्तियों का स्थूल सूक्ष्म में जो कामनाएं थी वो सब समाप्त हो गया। जिसकी जरूरत है वो प्राप्त होगा ही, उसके लिए हमको कामना रखने की जरूरत नहीं है। और शक्ति, आत्मा की स्थिति में हम जब रहते हैं तो शक्ति भी हमारा जीवन में आ जाता, शक्तिशाली बन जाते। जो हमारे सामने कोई भी परिस्थिति आवे उसको हम फेस कर सकते, सामना कर सकते। बाबा ने भी अभी आया तो पहले यही बात सुनाया, बच्चों को जो भी बात देखने में आता है वो बात बाबा को दे दो। जो हमको अच्छा नहीं लगता, जो बात हमें दुख का शांति करता, जो बात हमारे मन को हेरा फेरी करता, उस बात को बाबा के हवाले कर दो। वो कौन कर सकता है? देहाभिमानी आत्मा तो नहीं कर सकते। देहाभिमान में जो फंस गया वो तो नहीं कर सकते। जो आत्मा अभिमानी है या आत्मा का अनुभव जिसने किया है वो तुरंत बाबा को हवाले कर सकते हैं। वो शक्तिशाली आत्मा है। ऐसे ही हमने परमात्मा को प्राप्त किया, परमात्मा का अनुभव। दुनिया में देखिए कितने विद्वान पंडित जगतगुरु लोग कितने बड़े बड़े अखाड़े बना के बैठे हैं, लेकिन उनको अभी तक मालूम नहीं है परमात्मा एक कहते हुए भी वो एक कौन है वो मालूम नहीं है। वो कितना वो लोग बेचैन है, कितना वो लोग उसमें अभी भी ढूंढ रहे हैं, क्या पानी में होगा? इतना बड़ा शास्त्र पंडित विद्वान पानी में जाके डूब रहा है, पानी में स्नान कर रहा है, पानी में भगवान है? क्योंकि सब में इसलिए वो लोग एक ही मंत्र सुना देते हैं, सब में परमात्मा है। परमात्मा एक कहते हुए भी सब में है, कैसे? परमात्मा का क्या अनुभव है? हमें बाबा ने अनुभव कराया परमात्मा एक कौन है। जिस कारण बाबा ने जो मुरली सुनाया, बाबा एक डायमंड है, परमात्मा का अनुभव करना माना ही डायमंड को प्राप्त करना। बाबा का अनुभव किया तो हमारे जीवन में डायमंड को प्राप्त कर लिया। जैसे हमें एक बात याद है, मैसूर में एक पूजा वाले घर था, बहुत साल से पूजा करते थे, बहुत मट्टी भर गया था, तीन गोले थे उसका, बहुत साल से मट्टी भर गया था। एक दिन सोचा, उसके पुराने दादा परदादा लोगों से लेकर वो पूजा होती थी, तो उन्होंने एक दिन सोचा इसको अच्छी तरह सफाई करेंगे, बहुत साल से ये मट्टी भरा हुआ है। दो भाई थे आपस में, एक भाई मट्टी निकालते गया, थोड़ा निकला तो इतना जोर से चमक आया, तो उसको वंडर आया, क्या ये मट्टी के अंदर, ये गोले के अंदर बहुत प्रकाश आ रहा है। फिर उसने और अच्छी तरह और साफ करने लगा तो पूरा प्रकाश आ गया, वो उस प्रकाश को सहन कर नहीं कर सकते, तो तीनों किया तो वास्तव में वो डायमंड था। अब देखिए माताएं छोटे छोटे डायमंड पहनती है तो कितना चमकता है, झलकता है, तो इतना बड़ा अगर डायमंड होगा तो कितना उसका प्रकाश होगा। आखिर उसको पुलिस के द्वारा गवर्नमेंट को सौंपा, गवर्नमेंट वाले भी उसको अपना नहीं रख सके, उन्होंने वर्ल्ड बैंक में रख दिया। वर्ल्ड बैंक वालों ने उसकी वैल्यू बताया कि एक डायमंड जो है वो सारे विश्व को चला सकते, इतना वैल्यूबल है एक डायमंड। तीन डायमंड कितना वैल्यूबल है। तो हमको ऐसा डायमंड बाबा मिला है, तीनों लोकों को संभालने वाला, तीनों कालों का ज्ञान देने वाला सर्वशक्तिवान बाबा मिला है, वो कितना बड़ा डायमंड है। अगर उस डायमंड को सर्व संबंधों के चाबी में संभाल के हम रखते हैं हमारे जीवन में, बाबा के साथ सर्व संबंधों को हम अपने जीवन में बांध लेते हैं, तो हमको कोई भी संबंध का बंधन नहीं रहेगा। किसी किसी को बच्चे नहीं होंगे तो बाबा के बच्चे बनने के बाद भी सोचते हमको तो बच्चा ही नहीं है, कैसे भी एक बच्चा होना चाहिए, वो दुनिया वाले कहते हैं। हमारे पास एक बड़ा सर्जन आया था, उसने बोला बहन जी हमें भगवान ने सब कुछ दिया है, सिर्फ एक आश है, मैं मंदिर के लिए जा रहा था, यहाँ बहुत बरसात आ गया, ये भी मंदिर है इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। तो हमारी बहनों ने उसको ज्ञान सुनाया तो तुरंत उसने बोला लास्ट में हमको एक ही आशा है, वो भी हमारे पत्नी को, उसको एक बच्चा चाहिए। तो बिचारे देखिए कितना भी बड़ा पद वाला हो, उनको संबंधों का कितना दुख है, बच्चा एक चाहिए, वो बच्चा भले बूढ़े होने के बाद उसको, आजकल वो बना हुआ है ना हमारा शिवमणि जैसे, उधर भेज देते हैं तो भी अर्जा नहीं है, वो बाद अभी बच्चा चाहिए। तो बाबा के बच्चों को ऐसे किसी संबंध का आकर्षण या उनकी जरूरत, उनके बिना हम नहीं रह सकते, ऐसा अनुभव होता। अगर जिन्होंने परमात्मा का सच्चा अनुभव किया, सच्चा प्यार पाया है, तो वो कभी किसी संबंध का अपने जीवन में चाहना नहीं रख सकते, क्योंकि बाबा को जिन्होंने पाया है वो सब कुछ पा लिया। जहां बाप है वहां सारी दुनिया उनके पास है। हम इसलिए दुनिया वालों को कहते हैं वन गॉड वन वर्ल्ड फैमिली। हम सब एक भगवान और एक भगवान के बच्चे, एक परिवार के हैं, इतना हम दुनिया लोगों को स्लोगन सुनाते हैं। तो प्रैक्टिकली हम अपने जीवन में अनुभव तब कर सकते जब हम बाबा को अच्छी तरह पहचानना हो, सच्चाई रीति से पहचाना हो, बाबा का प्यार का अनुभव किया हो। बाबा ने कितना प्यार दिया, परसों बाबा ने आया यहाँ पर, हम बच्चों के कारण अपना रक्त कैसे भी हो, कितना तकलीफ भी हो, तो भी हम बच्चों के प्यार के कारण बाबा अपने रक्त को खींच के ले आया। पहले प्यार ही तो दिया, हम कर्नाटक वालों को क्या चाहिए था बाबा से, पहले दृष्टि चाहिए था। बाबा आते ही आने के बाद बाबा सबको कितना दृष्टि दिया, दृष्टि देने के बाद शक्ति भर दिया, फिर बाद में बोला बच्चों को मैं कितना प्यार करूं, सभी बच्चे प्यार कर रहे हैं बाप को, कितना खुशी में रहने के लिए बाबा ने बच्चे कितना कैसे भी परिस्थिति वो अपना जीवन में मुस्कुराहट रहे। हमको जो चाहिए बाबा ने दे दिया। हम सारा चार पेज मुरली सुनते, हम ऐसा नहीं सोचे बाबा आया केवल थोड़ी घड़ी के लिए चले गया, बाबा आया हमको प्यार दिया, हमको शक्ति भरा, हमको जो चाहिए वो वरदान दे दिया। उसको तो पहले हम लोग संभाले, जो बाबा ने वरदान दिया है उसको हम धारण करें पहले। एक बात को भी हम पूरी तरह धारण कर लेते हैं तो सारा बाबा ने इतना जो ज्ञान दिया उस सब भी बातों को हम धारण कर सकते हैं। कोई व्यक्ति एक गुण को धारण करेगा तो दूसरा सब गुण उसके अंदर आ जाता है। एक शक्ति को अपनाएंगे तो दूसरा सब शक्ति आ जाती है। इसी तरह बाबा को, बाबा की एक बात को धारण करते मुरली में सार इसलिए दो बातें आती है। चार पेज की मुरली में दो बातें सार रूप में धारणा करनी होती है। अगर दो बातों को धारणा कर लेते हैं तो चारों पेज के ज्ञान को हम अपना सकते हैं। तो इतनी शक्ति है। तो इसी तरह बाबा को हमने पा लिया तो सर्व संबंध बाबा हमारा है, हमको कोई संबंधों का खिंचावट नहीं है, कोई चिंता नहीं है, क्योंकि जिन्होंने बाबा को प्राप्त किया है वो अपने जीवन में संतुष्टता का अनुभव कर सकते हैं। आज का स्लोगन भी लास्ट में संतुष्टता का था। हम हर रोज सुनते रहते हैं, इसको साधारण बातें समझते हैं, लेकिन वो संतुष्टता का अनुभव कब होगा? जिन्होंने बाबा को पाया है, अंदर में अनुभव किया है, जिसको पाना था सो पा लिया, उसको कहते हैं कंटेंट्स आर रिच, डिसकंटेंट्स आर पुअर। जिन्होंने बाबा को पाने का कंटेंटमेंट हो गया, तृप्त आत्मा बन गए, बाबा को मैंने पा लिया है, वो अनुभव कर लिया, मेरे को और कुछ नहीं चाहिए, मेरा तो एक बाबा है, ये सचमुच हमारा अंदर अनुभव हो गया, तो वो हमारे जैसे अमीर दुनिया में कोई नहीं है। क्योंकि जहां बाबा है वो सब कुछ हमारा है। बाबा ही नहीं है तो हम भिकारी बन जाते, भिकारी हो जाते। तो इसलिए बाबा हमारा है तो हमारे से जो भी नेगेटिव बातें वो सब निकल चुके हैं, हम अमीर हो गए, हम रिचेस्ट इन द वर्ल्ड कहते थे बाबा ने पहले एज में, ब्रह्मा कुमारी रिचेस्ट इन द वर्ल्ड। अभी भी क्या, बाबा इतना गुणों से हमें सजाया है, सजा रहे हैं, शक्तियां भर रहे हैं, ज्ञान को रोज हमें इतना बुद्धि को विशाल कर रहा है, तो हमारे जैसा और कौन है दुनिया में। अभी हमें ये प्रैक्टिकल रोज बाबा जो भी मुरली में सुनाता है उसका अनुभव करना, क्योंकि जो अनुभव करता है वो अनुभवी मूर्ति खुद को प्रत्यक्ष करता, वो अनुभवी मूर्ति ही किसने ऐसा बनाया परमात्मा को अनुभव कराता, प्रत्यक्ष करता। बाबा को प्रत्यक्ष करना हो तो हम खुद ही करना पड़ता है, खुद को प्रत्यक्ष करना, बाबा की हर बात को अपने जीवन में धारण करना, हर गुण को धारण करना, हर शक्ति को पालक जीवन में भरना, वो जीवन बाबा को प्रत्यक्ष कर सकता। क्योंकि एक बार दादी जी हमारे मैसूर में जब आई थी संतों का समागम में, दादी बोली मैं भगवान से बात करती हूँ, तो सुबह सुबह चार संत लोग बात के आए सेंटर में दादी से पूछने के लिए, दादी आप भगवान से कैसे बात करती हो, हमें भी सिखाओ। तो क्या मतलब, उनका भगवान का नॉलेज नहीं है ना, खुद को भगवान समझ के बैठे हैं लेकिन भगवान से बात कर रही है दादी प्रैक्टिकल में, ये अनुभव उनके पास तो नहीं है। उनको सुनने के लिए, अनुभव सुनने के लिए पैसे होकर आए थे। तो अम्मी ऐसे दुनिया के लोग कितने भी बड़े हो, हम बाबा से जो प्राप्त किया, बाबा से हम क्या बातें करते हैं रोज अमृत वेले, दादी का रोज अमृत वेले की बातें हमें मुरली ईमेल से आती है। तो हम लोग भी ऐसा अनुभव करें और दूसरों को भी अनुभव सुनावे। दादी कल सबको क्लास कराई है, हम सबसे चार बात की चाहती है, चार बातों की सेवा करना चाहती है। आदरणीय दादी जी, जानकी दादी जी, हम सबके अंदर चार बातों की सेवा कराने चाहती है। सबसे पहली सेवा है, हम सब एक है और एक के हैं, ऐसा अनुभव करें। देखिए हम जब बैठते हैं बाबा के आने के समय, हम भले उसके लिए बॉर्डर बनाते हैं ये वो बैठना, तो भी बाबा के बच्चे ही आते हैं। हमारे कोई और है, हमारे सेंटर से और है, ऐसा बोलने में लज्जा आता है, क्योंकि ये सारा बेहद परिवार है, किसको ऐसा बोले ये हमारे हैं, आप हमारे नहीं हैं। ये प्रैक्टिकल मधुबन में अनुभव करने का चांस, हम सब एक है और एक के हैं, कहां भी बैठे हैं, कोई भी पहले भोजन करे, कोई भी पीछे भोजन करे, कोई भी बात आगे पीछे होवे, लेकिन हम सभी एक हैं, एक के हैं। ऐसा प्रैक्टिकल अनुभव करने का मधुबन का ऐसा श्रेष्ठ स्थान है जो और कहीं भी हमें मिल नहीं सकता। अगर ये अनुभव हम कर लेते तो अपने स्थानों में भी ये अनुभव हम करके दूसरों को करा सकते हैं। हम सब एक हैं। और दूसरा दादी ये चाहती है, हम लोगों ने जो बाबा से प्राप्त किया है, सत्यता, सच्चाई और प्यार, ईश्वरीय प्यार और सच्चाई, सत्यता, जो भी बातें हमने सच्चाई के बारे में प्राप्त किया है, दूसरों को सच्चाई का अनुभव कराना। हम खुद सच्चाई में रहेंगे तो दूसरों को अनुभव करा सकते, अगर हम खुद नहीं रह सकते हैं तो दूसरों को कैसे करेंगे। बाबा ने जो बोला, अनुभवी मूर्त, उनके सामने जो भी बातें आएंगे वो आएगी जाएगी, उसको कोई इफेक्ट नहीं होगा। जो सिर्फ वाचा से बोलेंगे वो एरा पेरे होंगे, नीचे ऊपर होंगे। तो इसलिए हमें ये नक्की करना है, हमें हर बात की अनुभवी बनना है। पहले फाउंडेशन आत्मा का अनुभवी बनना है, दूसरा परमात्मा का अनुभवी, एक बाप दूसरा ना कोई, और सब हमारे हैं, बाबा एक, दूसरा कोई नहीं है, फिर सभी हमारे हैं। ये दादियों का स्लोगन है, प्रैक्टिकल ये अनुभव कराते रहते हैं हर रोज, हम भी यही अनुभव करना है। और दूसरा, हमें जो प्राप्ति हुई है इतने साल से सच्चाई और प्यार का, ईश्वरीय पालना का, ये हम दूसरों को अनुभव कराना है। उसके लिए हमें निमित्त बनना है, चाहे अपने घर वालों को, चाहे अड़ोस पड़ोस वालों को, चाहे समाज के कोई भी जात धर्म वालों को, सबको अनुभव करना सच्चाई क्या है और ईश्वरीय प्यार क्या है, ये सेवा करने के लिए हम निमित्त हैं। पहले हम आपस में एक हैं, एक के हैं, ये अनुभव करके कराना है। दूसरा, सच्चाई और ईश्वरीय प्यार का अनुभव खुद करके दूसरों को कराना है। और तीसरा है, सेवा कितना भी बहुत बढ़ रहा हो लेकिन हमारी जो एम है, बाबा और दादियां चाहती 108 में, 108 की माला में आ जाओ, 16,000 की माला में आ जाओ, उसके लिए दो बातों के विघ्न हैं। उन दो बातों को अगर हमारे जीवन से उस विघ्न को हटाएंगे तो हमें 108 16,000 की माला में आने की पूरा पुरुषार्थ कर सकते हैं। वो है एक सेवा का रेस होती है। सेवा की रेस में हमारा रेस जाके रेस हो जाती है तो स्थिति बिगड़ जाती है, तो हम 108 में कहाँ आएंगे, प्रेता अंत तक भी आना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये सब रजो प्रधान और तमो प्रधान का संस्कार वहां नहीं जा सकता है ना। इसके लिए दादी कहती पहला है सेवा का बंधन से छूटे और दूसरा स्वभाव का जो घर्षण। इन दो बातों में बहुत बिजी है ब्राह्मण, इस कारण 108 की माला में आने की पुरुषार्थ नहीं कर सकते, दूसरों को भी वो सेवा वो प्रेरणा दे नहीं सकते। तो आज से हम सभी मधुबन से इन दो बातों से छूटने का दृढ़ संकल्प करेंगे। और चौथा है वायुमंडल, वातावरण और वाइब्रेशन। हम जैसे वार्ता करेंगे वैसे वाइब्रेशन होगा, वाइब्रेशन जैसे वातावरण बनेगी और वायुमंडल बनेगा। तो वार्ता हमारा कैसे है इस बात पर हमें बहुत ध्यान देना, हम किसके साथ क्या वार्ता करते हैं सुबह से शाम तक, ज्यादा परसेंटेज किस बात का व्यर्थ बातों में जाते हैं, जितना व्यर्थ करते उतना वाइब्रेशन, उतना वातावरण बनता, वायुमंडल बनता। तो इसके लिए हमें बहुत ध्यान रखना होता, दुनिया में इन बातों का किसी का ध्यान नहीं है, हमारा ध्यान बहुत जरूरी है, क्योंकि हम बच्चे प्रैक्टिकली अनुभवी आत्माएं अनुभूति कर रहे हैं आत्मा का और परमात्मा का। तो अनुभवी आत्माएं अपने ऊपर बहुत ध्यान देना है, हमें अच्छा वाइब्रेशन देना है, अच्छा वायुमंडल क्रिएट करना है, वातावरण बनाना है, जिस वातावरण के लिए लोग प्यासे हैं। मधुबन के वातावरण को क्यों सभी इतना आकर्षण करते, दुनिया में कहते ये इस धरती का स्वर्ग है, मधुबन को धरती का स्वर्ग मानते हैं, क्यों? ये वायुमंडल इतना शुद्ध है, यहाँ सारा दिन ज्ञान की वार्ता चलता रहता है, जिस वार्ता से वायुमंडल वाइब्रेशन अच्छा है, वायुमंडल और वातावरण अच्छी है। तो हम भी जहाँ है वहाँ अगर हम हमारे वार्ता के ऊपर अटेंशन रखते तो उस वायुमंडल को हम अच्छा बना के रख सकते हैं, जिससे दूसरों की सेवा होती है। तो ये चार प्रकार की सेवा करने के लिए दादियां हम सबसे चाहती है, हम ये इस बार मधुबन से जब जाते हैं तो इन चारों बातों को ध्यान में रखेंगे और हर रोज की मुरली को अनुभव करने के लिए धारणा करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे, उस बात को अपने जीवन में उतारेंगे, उस बात को ही एक दो के साथ लेन देन करेंगे, ऐसा हम संकल्प करके जाए तो हम अनुभवी मुहूर्त जो बाबा प्यार करता, बाबा मदद करता। बाबा ने बोला हिम्मत का एक पाव रखो, दूसरा पाव बाबा आगे रखने के लिए मदद करेगा। मेरे को अनुभव है जब हम कर्नाटक में मेगा प्रोग्राम नहीं करते थे, हम लोग सोचते थे एक दिन की मेगा प्रोग्राम में कितना मेहनत करना पड़ता, कितना खर्च करना पड़ता, क्यों करें, इसके अलावा दूसरा 10 कॉन्फ्रेंस करें। ऐसा सोच सोच करके मीटिंग कर करके हमने स्टॉप करके बैठे थे। जब हमारा कर्नाटक का टर्न आया तो बाबा ने हम सबको उठाया, बाबा ने डायरेक्ट अटैक किया और पूछा आप लोग मेगा क्यों नहीं किया। हम लोगों को बाबा के सामने क्या जवाब देना, अंदर में क्या क्या व्यर्थ संकल्प करके बैठे हैं। फिर बाबा ने जवाब दिया आप बच्चे ये मेगा प्रोग्राम बाबा का पसंदीदा प्रोग्राम है, आप हिम्मत रखो तो आपको हजारों गुना मदद मिलेगा। उसी घड़ी हमने बाबा के सामने दृढ़ संकल्प किया, नहीं बाबा हम जरूर करेंगे, जाते ही उसका प्रबंध करेंगे, हम सभी मिलकर करेंगे। जैसे हिम्मत का संकल्प किया तो सभी भाई बहने, सारे जोन वाले इतना प्यार प्रेम से सेवा में मिल गए, सभी तन से मन से धन से खुशी खुशी से। अभी तक जो दूसरी सेवा करते थे बहुत मेहनत करते थे, लेकिन बाबा बोलने के बाद हिम्मत रख करके जो सेवा में लगे उसमें कोई प्रकार का मेहनत नहीं लगा, अपने आप सभी का एक मत हो गया, सभी का मन का एक संकल्प हो गया, तो वो बहुत सफलता हो गई। लाखों लोग एकत्रित हुए, जयमाल हर वर्ग की सेवा किया, सब करके इतना अच्छा सफलता हुई जो लोगों के सामने पेपर वाले भी पूछ रहे थे, आप लोग कैसे किया, इतने लोगों को कैसे एकत्रित किया, कैसे आ गए, सबको वंडर हुआ। उनको पता नहीं था ये भगवान का प्लान है, भगवान का पसंदीदा प्रोग्राम है। तो दुनिया में बहुत प्रोग्राम, लाखों का प्रोग्राम करते हैं नेता लोग या गुरु लोग, लेकिन बाबा के प्रोग्राम और उनके प्रोग्राम में रात दिन का फर्क होता है। तो और बाबा की डायरेक्शन से हम जो करते उसका हजार गुना मदद बाबा से मिलता है। तो इसलिए हम जो भी बातें अनुभवी बनने के लिए, बाबा ने ये भी बोला ना, अगर आप लोग अनुभवी नहीं बनेंगे, बाद में ये नहीं कहना बाबा पलाने बात पर मेरा कमजोरी है, ये आज से ही ये खत्म हो जाना चाहिए। तो हमें मन को छू लिया, हम कभी भी बाबा को ऐसा नहीं बोलेंगे आप शक्ति दे दो, आप धारणा कराओ, नहीं, बाबा ने हमें सब कुछ दिया है, सिर्फ हमको हिम्मत रखना है। हम हिम्मत करेंगे तो बाबा पूरा हमें मदद देगा, दादियां पूरा मदद दे रही है, सारा परिवार दे रहे हैं, तो इतना सारा मदद लेकर के हम खुद अनुभवी नहीं बने तो किस पर कसूर है। तो इसलिए हम वायदा करेंगे, बाबा का जो भी खजाना हमें मिली है, इतना प्राप्तियां मिली है, गुण शक्तियां, ये श्रेष्ठ संगम युग का ब्राह्मण जीवन, ये परिवार, इन सबको हमने प्राप्ति किया है, हमारा जीवन को सफल करेंगे, अनुभवी बनेंगे, अपने अनुभवों द्वारा अनेकों को अनुभव कराएंगे या बाबा को प्रत्यक्ष करेंगे, ये हम सबका इस समय दृढ़ संकल्प हम सभी मिलके करके जाएंगे। क्या चाहते हैं आप सभी, करेंगे ऐसा है? बाबा का हर रोज का मुरली का अनुभव करेंगे, प्रैक्टिकल अनुभवी बनेंगे और दूसरों को अपना अनुभव सुनाएंगे। हमारा अनुभव ही हमारा जीवन को प्रत्यक्ष करेगा, हम सबका जीवन प्रत्यक्ष हो जाएगी तो बाबा को प्रत्यक्ष करना देर नहीं होगा। तो इसलिए ये बाबा को, दादियों को और मधुबन वालों को कितना हम दिल से थैंक्स देवे, ऐसे मौका हमें दिया है, यहाँ पर हम शांति में बैठ के हर बात की गहराई में जाकर के मन में, मन के अंदर सभी बातों को धारणा करके यहाँ भर के जाएंगे, वहां जाने के बाद एक एक बात को निकाल के अच्छी तरह प्रैक्टिस करेंगे, अनुभव करेंगे और दूसरों को भी कराएंगे, यही प्रेरणा लेके जाएंगे। ओम शांति। अभी हम सभी हमारे मन से बाबा को थैंक्स देते हुए योग करेंगे।
शक्ति सेना की रणभेरी।